میشه. ستائیس اپریل 1983، کمار بھٹی 27 اپریل 1983، درشتی تتھا ورتی پریورتن کے لیے یوکتیا، کماروں کی بھٹی میں پران ویکت باپ دادا کے مدھر مہاواکیا، آج باپ دادا سرو پرشارتھیوں کا سنگٹھن دیکھ رہے ہیں، اسی پرشارتھی شبد میں سارا گیان سمایا ہوا ہے، پرشارتھی ارتھات پرش ارتھات رتھی، کس کا رتھی ہے، کس کا پرش ہے، اس پرکرتی کا مالک ارتھات رتھ کا رتھی، ایک ہی شبد کے ارتھ سوروپ میں استھت ہو جاؤ تو کیا ہوگا، سرو کمزوریوں سے سہج پار ہو جاؤ گے، پرش پرکرتی کے ادھیکاری ہے نہ کہ ادھین ہے، رتھی رتھ کو چلانے والا ہے نہ کہ رتھ کے ادھین ہو چلنے والا، ادھیکاری سدا سروشکتیوان باپ کی سروشکتیوں کے ادھیکاری ارتھات ورثے کے ادھیکاری وہ حقدار ہے، تو سرو کمزوریوں سے پار کب ہو جاؤ گے، جب ایک ہی شبد کے ارتھ سوروپ میں استھت ہو جاؤ تو سرو کمزوریوں سے سہج ہی پار ہو جاؤ گے، سرو کمزوریوں سے سہج پار کب ہو جاؤ گے، منجو بہن آج کی مرلی وردان، جب جو بھی سنکلپ من میں آتے ہیں وہ باپ کے آگے ارپن کر دو تو سرو کمزوریوں سے پار ہو جاؤ گے، تو بابا کہہ رہے ایک ہی شبد کے ارتھ سوروپ میں استھت ہو جاؤ تو کیا ہوگا، سرو کمزوریوں سے سہج پار ہو جاؤ گے، پرش پرکرتی کے ادھیکاری ہے نہ کہ ادھین، رتھی رتھ کو چلانے والا ہے نہ کہ رتھ کے ادھین ہو چلنے والا، ادھیکاری سدا سرو شکتیوان باپ کی سرو شکتیوں کے ادھیکاری ارتھات ورثے کے ادھیکاری وہ حقدار ہے، سرو شکتیاں باپ کی پراپرٹی ہے اور پراپرٹی کا ادھیکاری ہر ایک بچہ ہے، یہ سرو شکتیوں کا راجیہ بھاگ بھاگیہ باپ دادا سبھی کو جنم سدھ ادھیکار کے روپ میں دیتے ہیں، جنمتے ہی یہ سوراجیہ سرو شکتیوں کا ادھیکاری سوروپ کے سمرتی کا تلک اور باپ کے سنیہ میں سمائے ہوئے سوروپ کے روپ میں دل تخت سبھی کو جنم لیتے ہی دیا ہے، جنمتے ہی وشو کلیان کے سیوا کا تاج ہر بچے کو دیا ہے، تو جنم کے ادھیکار کا تخت تلک تاج اور راج سب کو پراپت ہے نا، ایسے چاروں ہی پراپتیوں کی پراپتی سوروپ آتمائیں کمزور ہو سکتی ہے، کیا یہ چار پراپتیاں سنبھال نہیں سکتے ہیں، کون سی چار، چوتھا سوراج، کبھی تلک مٹ جاتا ہے کبھی تخت چھوٹ جاتا ہے کبھی تاج کے بدلے بوجھ اٹھا لیتے ہیں، ویرتھ ککھپن کی ٹوکری اٹھا لیتے ہیں، نام سوراجیہ ہے لیکن سوئم ہی راجا کے بدلے کیا بن جاتے، ادھین پرجا بن جاتے، ایسا کھیل کیوں کرتے ہو، اگر ایسا ہی کھیل کرتے رہیں گے تو راجا کب بنے، ایسا ہی کھیل کرتے رہیں گے تو پچھاڑی میں آنا پڑے گا، ایسا ہی کھیل کرتے رہیں گے تو سنسکار پڑ جائیں گے پراپتیوں میں رکت ہو جائیں گے، ایسا ہی کھیل کرتے رہیں گے تو سدا کے راجیہ بھاگیہ کے ادھیکار کے سنسکار اویناشی کب بنیں گے، ایسا ہی کھیل کرتے رہیں گے تو سدا کے راجیہ بھاگیہ کے ادھیکار کے سنسکار اویناشی کب بنیں گے، اگر اسی کھیل میں چلتے رہے تو پراپتی کیا ہوگی، جو اپنے انادی سنسکار اویناشی نہیں بنا سکتے وہ جو اپنے آدی سنسکار اویناشی نہیں بنا سکتے وہ आदिकाल के राज्य अधिकारी कैसे बनेंगे? अगर बहुत काल के योद्धेपन के ही संस्कार रहे, अर्थात युद्ध करते करते समय बिताया, आज जीत कल हार, अभी अभी जीत अभी अभी हार, सदा के विजयीपन के संस्कार नहीं, तो इसको क्या कहा जाएगा? प्यादे, क्षत्रिय कहा जाएगा। प्यादे किसको कहा जाएगा? वरदान में था अभी अभी। प्यादे, घोड़ेसवार, रुकने वाले, थकने वाले प्यादे, और रुकने वाले और चलने वाले महावीर। इसको क्षत्रिय कहा जाएगा या ब्राह्मण। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, क्षत्रिय तो फिर क्षत्रिय ही जाकर बनेंगे। देवता की निशानी और क्षत्रियों की निशानी में देखो अंतर है। तपस्वी आत्माओं की निशानी क्या है? मंजूबेन आज कुछ और है स्लोगन में। यादगार चित्रों में उसको कमान दिखाया है, उसको मुरली दिखाई है। मुरली वाले अर्थात मास्टर मुरलीधर बन विकारों रूपी सांप को विषैले बनाने के बजाय विष समाप्त कर शैया बना दी। कहां विष वाला सांप, कहां शैया। इतना परिवर्तन किससे किया? मुरली से। ऐसा परिवर्तन करने वालों को ही विजयी ब्राह्मण कहा जाएगा। तो अपने से पूछो, मैं कौन? मुरली है 27 अप्रैल 1983, कुमार भट्टी, दृष्टि तथा वृत्ति परिवर्तन के लिए युक्तियां, कुमारों की भट्टी में प्राणव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाप दादा सर्व पुरुषार्थियों का संगठन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? पुरुषार्थियों का संगठन। ब्राह्मणों के इस परिवार में क्या है? अरविंद भाई, मधुबन में क्या आकर्षित करता है? ईश्वरीय परिवार। और कौन आकर्षित करता है? बाबा के बोल कौन से? आओ मेरे मीठे बच्चे, ये शब्द सभी को अपनी तरफ कशिश करते हैं। और क्या आकर्षित करता है? यह ईश्वरीय परिवार आकर्षित करता है। तुम ईश्वरीय परिवार में केवल ज्ञान की लेन देन होनी चाहिए। आज के प्रश्न का उत्तर है ये कि सबसे ज्यादा कशिश किसकी है? तो कशिश सबसे ज्यादा है किसकी? बाबा के कौन से शब्दों की? आओ मेरे मीठे बच्चों, इन शब्दों की सम्मुख सुनने से ज्यादा कशिश है, ईश्वरीय परिवार की कशिश है इस ब्राह्मण परिवार की। बाबा कौन से संगठनों को देख रहे हैं? संगठन को पुरुषार्थियों का संगठन देख रहे हैं। इसी पुरुषार्थी शब्द में सारा ज्ञान समाया हुआ है। पुरुषार्थी शब्द में सारा ज्ञान समाया हुआ है। 10 शब्द बताओ जिसमें सारा ज्ञान समाया हुआ है।
चलना है घर वापस,
ज्ञान का सार नहीं, शब्द, वाक्य नहीं, वाक्यों का, शब्दों का समूह नहीं, शब्द। मैं और मेरा, ये 3 शब्द है, एक ही शब्द, 3 शब्द। अच्छा, नष्टो मोह, ठीक है, एक ही शब्द। मन मना भव, चलो मन मना भव एक शब्द हो गया। हाँ, मध्याजी भाव, ठीक है, एक ही शब्द, 2 नहीं, एक शब्द जिसमें सारा ज्ञान समाया हुआ है। इसी पुरुषार्थी शब्द में सारा ज्ञान समाया हुआ है। राइट, फिर पर 2 हो गए, वो
जोड़
देते हैं। और अभी तक नहीं है डांस। अच्छा, डांस शब्द में सारा ज्ञान समाया हुआ है। आवागमन, वानप्रस्थी, पूरा ज्ञान समाया हुआ है। पवित्रता, पवित्रता शब्द में सारा ज्ञान समय ड्रामा पाप ये सब पावरफुल शब्द है। एक तो पुरुषार्थी, एक ड्रामा, एक बाप और
ज्ञान।
चक्र ये शब्द है सारे, जिनमें एक ही शब्द में सारा ज्ञान समाया, वो पहला बाप, दूसरा
ड्रामा,
तीसरा चक्र, चौथा सीढ़ी, पांचवा झाड़, कमल, एक शब्द बिंदु, बिंदु में ही सारा ज्ञान समाया हुआ है, एक ही शब्द बिंदु, और दस नहीं हुए अभी तक। कौन सा गधा? त्रिलोक, एक ही शब्द है त्रिकालदर्शी, स्वदर्शन, एक ही शब्द। शब्द जिसमें एक सारा ज्ञान समाया हुआ है, त्रिमूर्ति। चलो ठीक है, ये भी एक, वो बाप में आ गया है, बाप बोला उसमें आ गया, वो अलग कैटेगरी का चाहिए। एक शब्द याद, राइट, याद शब्द में ही सारा ज्ञान समाया हुआ है। सबसे पहला बाप, दूसरा ड्रामा, चक्र, सीढ़ी, याद, झाड़, बिंदी, कमल, कमल भी लिया जा सकता है, पवित्रता और मुरली। हाँ मुरली, एक मुरली शब्द में ही सारा ज्ञान समाया हुआ है।
याद
में आ गया वो। और मिलन, इसी पुरुषार्थ इस शब्द में सारा ज्ञान समाया हुआ है।
मोहब्बत,
प्यार, प्रेम, प्रीति, इश्क, पुरुषार्थी अर्थात पुरुष अर्थात रथी, किसका रथी, किसका पुरुष, इस प्रकृति का मालिक, पुरुषार्थी अर्थात जो रथ है,
साइलेंस,
इस प्रकृति का मालिक अर्थात रथ का रथी, एक ही शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ तो क्या होगा, बस इस एक ही शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ तो सर्व कमजोरियों से सहज पार हो जाएंगे। पुरुष प्रकृति के अधिकारी है, ना कि अधीन, देह की अधीन तनाव, देह नीचे हम ऊपर। रथी रथ को चलाने वाला है, ना कि रथ के अधीन हो चलने वाला, सारी अधीनता समाप्त। अधिकारी सदा सर्वशक्तिवान, बाप की सर्वशक्तियों के अधिकारी अर्थात वर्षे के अधिकारी व हकदार, सर्वशक्तियां बाप की प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी का अधिकारी हर एक बच्चा है। यह सर्वशक्तियों का राज्य भाग्य बाप दादा सभी को जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में देते हैं। जन्मते ही यह स्वराज्य, जन्मते ही यह स्वराज्य, स्वराज्य किसको कहा आज, सर्व शक्तियों को, अधिकारी स्वरूप के स्मृति का तिलक, बाप के स्नेह में समाये हुए स्वरूप के रूप में दिल तक, सभी को जन्म देते ही दिया है, जन्मते ही विश्व कल्याण के सेवा का ताज हर बच्चे को दिया है। तो जन्म के अधिकार का तख्त, तिलक, ताज और राज्य सबको प्राप्त है ना, ऐसे चारों ही प्राप्तियों की प्राप्ति स्वरूप आत्माएं कमजोर हो सकती है। तो सबसे पहला दिया तिलक, कौन सा तिलक, स्मृति का तिलक, और कौन सा तिलक, स्वराज्य का तिलक, और कौन सा तिलक, सम्मान का तिलक, और कौन सा तिलक, विजयी भव का तिलक, और कौन सा तिलक, योगी भव, पवित्र भव का तिलक, अमर भव का तिलक, जन्मते ही ये सारे तिलक प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहला है तिलक, फिर है ताज, कौन सा ताज दिया है, विश्व कल्याण का ताज, विश्व परिवर्तन का ताज, विश्व कल्याण के जिम्मेवारी का ताज, पवित्रता का ताज, और ताज लाइट का ताज, ताज तख्त। फिर तख्त कौन सा दिया? पहले अकाल तख्त ब्रुकुटी का, उसके बाद दिल तख्त परमात्म दिल तख्त दिया, एक रस्थिति का तख्त, सेवा की तो ताज नहीं। फिर उसके बाद में राज्य, राज्य अर्थात सर्व शक्तियां। ऐसे चारों ही प्राप्तियों की प्राप्ति स्वरूप आत्माएं कमजोर हो सकती है। क्या यह चार प्राप्तियां संभाल नहीं सकते? कभी तिलक मिट जाता, कभी तख्त छूट जाता, कभी ताज के बदले बोझ उठा लेते। तिलक कैसे मिट जाता है? तिलक यहाँ लगाने के बाद कैसे मिटता है? यहाँ का तिलक कैसे मिटता है? यहाँ वाला तिलक कैसे मिटता है? पसीना पोछते पोछते तिलक को भी पोछ देते हैं, ठीक है, ये एक है। और यहाँ वाला गलती से हाथ होता है, और क्या, मुंह धुलाई करने से तिलक भी धुलाई हो जाता है, और तकदीर को कूटने से तिलक मिट जाता है, और यहाँ वाला तिलक खुजली होती है अगर किसी किस को, तो कुछ कुछ करते रहते हैं यहाँ पर, तो भी मिट जाता है। हाँ, वो पानी में हो गया। अभी आत्मिक स्वरूप का तिलक कैसे मिट जाता है? मैं बन से देहभान में आने से, क्यों क्या के क्वेश्चन में जाने से, संशय आने से, आसक्ति मोह विकार काम क्रोध सारे विकार आने से, और ईर्ष्या द्वेष मद मत्सर, और दूसरों की कमी कमजोरी देखने से ये तिलक मिट जाता है, अदृश्य हो जाता है स्वतः ही। जादू का तिलक है, पर चिंतन पर दर्शन बहिर्मुक्ता ये सब करने से, देह देखने से, देह का चिंतन करने से ये तिलक अपने आप अदृश्य हो जाता है। तिलक अर्थात स्मृति अर्थात याद। तो तिलक, कभी तिलक मिट जाता है, कभी तख्त छूट जाता है। ये तख्त कैसे छूट जाएगा? कोई बैठा है और तख्त कैसे छूटेगा? आप डर गए सबसे पहले डर से टाइम पूरा होता है तो तख्त स्वतः ही छोड़ देते।
बॉडी कॉन्शियस का माइंड
नहीं, ये तख्त स्थूल तख्त कैसे छूटता है? हलचल होती है तो ये तख्त हिलेगा ना, जब बैलेंस नहीं है तो ये तख्त हिलेगा तब छूटता है। हाँ, कोई आके उठा के पटक दे तो हमसे अधिक शक्तिशाली आकर हमको उठा के पटक दे, या फिर ये तख्त ही शक्तिशाली नहीं है, ये तख्त यदि कमजोर है तो गिरेगा ना। दिल तख्त कैसे छूट जाता है? अब दिल में और किसी को बिठाओ तो वो तख्त अदृश्य हो जाता है। दिल में सच्चाई सफाई नहीं है तो ये तख्त अदृश्य हो जाता है। बाप के दिल तख्त पर कौन बैठ सकते हैं? जिन्होंने स्वयं के दिल तख्त पर बाप को बिठाया है, सच्चे। तो तख्त, कभी ताज के बदले बोझ उठा लेते हैं। ताज कब अदृश्य हो जाता है? ताज पहना है वो कब निकल जाएगा? जब मोहताज नहीं, वो नहीं, स्थूल ताज
वो पहन लेंगे तो ये
छूट जाएगा। अच्छा, वो पहन लेंगे ठीक से, अगर नहीं पहना है तो अधिकारी नहीं, ये ताज स्थूल ताज सिर से बड़ा या छोटा टाइट हो तो भी, या फिर टूट जाए, या फिर कोई छीन ले,
झुकेंगे तो भी गिर जाएगा,
मगर झुकेंगे झुटका खाएंगे तो भी गिर जाएगा। सेवा का ताज कब? हाँ, हाँ तो अभी वो तो सूक्ष्म हो गया, तो ये जो है सेवा का ताज कब छूटता है, जिम्मेवारी का ताज, ठीक से नहीं निभाते हैं तो याद नहीं है कौन सी कौन सा ताज है, साधारणता। किसकी सेवा कर रहे है उसी को भूल गए। इसके लिए संडे की मुरली में कहा था ना, निमित्त बने हो परंतु किसकी सेवा अर्थ निमित्त बने हो ये मत भूलो। करनहार हूँ परंतु करावन हार के आधार पर करनहार हूँ, यह स्मृति टीचर बहनों से मुलाकात। तो व्यर्थ कक्पन की टोकरी उठा लेते, नाम स्वराज्य है लेकिन स्वयं ही राजा के बदले अधीन प्रजा बन जाते, ऐसा खेल क्यों करते हो? अगर ऐसा ही खेल करते रहेंगे तो सदा के राज्य भाग्य के अधिकारी के संस्कार अविनाशी कब बनेंगे? अगर इसी खेल में चलते रहे तो प्राप्ति क्या होगी? जो अपने आदि संस्कार अविनाशी नहीं बना सकते वह आदिकाल के राज्य अधिकारी कैसे बनेंगे? अगर बहुत काल के योद्धेपन के ही संस्कार रहे, अर्थात युद्ध करते करते समय बिताया, आज जीत कल हार, अभी अभी जीत अभी अभी हार, युद्ध ही युद्ध, सदा के विजयीपन के संस्कार नहीं तो इसको क्षत्रिय कहा जाएगा या ब्राह्मण कहा जाएगा? युद्ध समाप्त हो, पाश्चात्य जगत में एक बहुत ही बड़ा दार्शनिक हुआ है एथेंस में सोक्रेटस, जिसको हिंदी में सुकरात कहते हैं, उसकी जो पत्नी थी ज़ेनथिपे, उसका नाम था ज़ेनथिपे, उसकी वाइफ का नाम था, वो इतनी लड़ाकू थी कि बात मत पूछो, इतना सताती थी उसको, इतना सताती थी कि दिन भर कुछ ना कुछ उसको बोलती ही रहती थी, बोलती ही रहती थी, बोलती ही रहती थी, सारा गांव, संपूर्ण एथेंस नाम का जो शहर था जानता था उसके स्वभाव को, दुष्ट प्रवृत्ति की वो महिला थी। परंतु वो जो सुकरात था बड़ा ही शांत रहता था। एक बार तो उसने उबलता हुआ चाय या उनके इधर जो बनता है लिक्विड उसके सिर के ऊपर डाल दिया था, उसका आधा चेहरा ही काला हो गया तब से। वो चित्र भी है, बहुत प्रसिद्ध चित्र है, अगर इंटरनेट पे जाओ और टाइप करो तो आपको वो चित्र मिलेगा, अलग अलग जगह पर, विविध देश की अलग अलग प्रांत जगह पर वो चित्र है। वो बैठा हुआ है, उसकी पत्नी ऊपर से वो कटोरा डाल रही है गरम उबलता हुआ, परंतु वो दुखी बिल्कुल भी नहीं था उससे। वो उसको दिन रात सताती थी परंतु उसका कभी उससे झगड़ा ही नहीं होता था, क्योंकि वो एकदम शांत ही रहता था। नवयुवक उसके पास आते थे और पूछते थे, बताओ शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जानबूझकर आते थे पूछने, जिन्हें नहीं करनी होती थी, जिन्हें संन्यस्त होना होता था, और परंतु माँ बाप रोकते थे, वो जानबूझकर उसके पास आते थे ये पूछने के लिए कि घर पे अब बता सके कि इसने भी कहा है मत करो, परंतु वो कहता था बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि अगर तुमने किया और मेरी जैसी पत्नी है वैसी तुम्हें मिल गई तो तुम सुकरात बन जाओगे, अगर नहीं मिली तो तुम्हारा सौभाग्य, क्योंकि मेरी ये जो श्रेष्ठ स्थिति है ये इसी का परिणाम है, क्योंकि मैं निरंतर उसके सानिध्य में, मेरी परीक्षा होती रहती है निरंतर, मेरे धैर्य की परीक्षा। ज़ेनथिपे बहुत प्रसिद्ध नाम है इतिहास में, ज़ेनथिपे, उसके चरित्र का बड़ा गायन है, कैसी थी वो, बहुत ज्यादा, तो अंत में कुछ नहीं हुआ वो तो शांत ही रहा। उदाहरण बात इसके लिए कह रहा हूं, युद्ध नहीं, कोई युद्ध नहीं है, वो शांत है, वो जो कुछ कह रही है उसने उसे स्वीकार कर लिया है, इसके लिए युद्ध ही समाप्त हो गया है। पाश्चात्य जगत के महान दार्शनिकों में सोक्रेटिस का नाम है, फिलोसॉफी ऑफ सोक्रेटिस, डिडैक्टिक फिलोसॉफी ऑफ सोक्रेटिस, हिंदी में सुकरात कहते हैं उसे, बाद में उसे लोगों ने जहर देकर मार दिया, उसमें भी वो बहुत खुश था, उसको जहर देकर लोगों ने मार दिया, उसमें भी उसके शिष्य दुखी हो रहे थे परंतु वो खुशी में नाच रहा था, तब भी उसकी स्थिति इतनी ऊंची थी। अगर बहुत काल के युद्ध के पन के ही संस्कार रहे, अर्थात युद्ध करते करते समय बिताया, आज जीत कल हार, अभी अभी जीत अभी अभी हार, सदा के विजयीपन के संस्कार नहीं तो इसको क्षत्रिय कहा जाएगा या ब्राह्मण। ब्राह्मण तो देवता बनते हैं, क्षत्रिय तो फिर क्षत्रिय ही जाकर बनेंगे। देवता की निशानी और क्षत्रियो की निशानी में देखो अंतर है। तपस्वियों की निशानी मंजू बहन बताने वाले थे आप, स्लोगन श्रीमत प्रमाण। एक सेकंड में, जब चाहे तब न्यारा और प्यारा जो बन जाए, यह है तपस्वी आत्माओं की निशानी। जब चाहे तब शीतल स्वरूप और जब चाहे तब ज्वाला स्वरूप, ये किसकी निशानी है? शक्तिशाली आत्माओं की ये निशानी है। कुछ दिन पहले स्लोगन था, परसों यादगार चित्रों में उसको कमान दिखाया, उसको मुरली दिखाई। मुरली वाले अर्थात सदा मास्टर मुरलीधर बन विकार रूपी सांप को विषैला बनाने के बजाय विष समाप्त कर शैया बना देते हैं। कहां विष, कहां सांप, कहां शैया। इतना परिवर्तन किससे किया, किससे किया ये परिवर्तन? मुरली से। तो बस मुरली बजाते रहना है, दिन रात उठते जागते चलते फिरते मुरली इधर ऐसी। वो कृष्ण कैसे इधर ऐसे डाल के रखता है ना, निकाली पट्टे में, कमर बंद, हाँ कुमुद बहन भी साथ में रखते हैं हमेशा। मास्टर मुरलीधर निरंतर मुरली साथ। कई लोग हमेशा जेब में रखते हैं और कई लोग बुद्धि में भी रख के घूमते हैं। कहां विष, कहां सांप, कहां विष वाला सांप, कहां शैया। इतना परिवर्तन किससे किया? मुरली से। ऐसा परिवर्तन करने वालों को ही विजयी ब्राह्मण कहा जाता है। तो अपने आप से पूछो, मैं कौन?